जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। भगवद गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है, न प्रहर्षेति प्रियं प्राप्यं नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियं। स्थिर बुद्धि सम्मुद्धो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, प्रिय पदार्थ प्रिय प्राणी प्रिय व्यक्ति प्रिय वस्तु को पाकर जो हर्षित नहीं होता और अप्रिय पदार्थ अप्रिय अवस्था अप्रिय वस्तु अप्रिय व्यक्ति को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। प्रियता और अप्रियता ये रुचि के अनुकूल होना उसे प्रिय लगता है और रुचि के प्रतिकूल है उसे अप्रियता होती। लेकिन जिस महापुरुष की रुचि और अरुचि ये दोनों ही समाप्त हो गई, जो सत्ता समान में स्थित है, वे रुचि के अनुसार घटनाओं को और रुचि के विरुद्ध घटनाओं को देखकर उद्विग्न नहीं होते। उसका मतलब ये नहीं कि वे कोई काष्ठ की पुतली हो जाते हैं, पत्थर की कोई शिला की कोई पुतली हो जाते पत्थर की, नहीं, वे अभिनय मात्र तो करते हैं हर्षित होने का उद्विग्न होने का, लेकिन अंदर से गहराई से वे हर्ष और शोक को उद्वेग और आसक्ति को त्याग चुके हैं। जैसे सांप केचुली को छोड़कर नूतन जीवन जीता है, ऐसे ही अंतःकरण के आंदोलनों को अंतःकरण की वृत्तियों को आवेगों को आवेशों को सब को केचुली की तरह छोड़कर वो अपने आप में स्थित हुआ है। न अर्षति प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च अप्रियं। स्थिर बुद्धि सम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। तो ब्रह्मवेता ब्रह्म में स्थित है, हम ब्रह्म में परमात्मा में स्थित नहीं होते, इसलिए हमको परिस्थितियां नचाती रहती, परिस्थितियां दुखी करती रहती। हमने बाह्य जीवन का इतना आदर कर दिया, बाह्य वस्तुओं का इतना आदर कर दिया कि हम अपने केंद्र से बाहर आ गए, अंतःकरण मलिन हो गया, अपनी योग्यता नाश कर बैठे। हमारा बाह्य जीवन नश्वर जीवन है, अंतर जीवन शाश्वत जीवन है। बाह्य जीवन चंचल जीवन है और अंतर जीवन शांत जीवन है। बाह्य जीवन दुखपूर्ण जीवन है, अंतर जीवन परमानंद पूर्ण है। लेकिन हम बाह्य जीवन में इतने उलझ गए, इतने भटक गए कि अंतर जीवन में जाने के लिए 2 मिनट भी हमारे पास नहीं। मंदिरों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, गिरजाघरों में जाएंगे, सत्कर्म करने जाएंगे, लेकिन वो भी सब बाह्य जीवन में जी के करेंगे। मन का स्वभाव है उसको कुछ न कुछ करना चाहिए, किए बिना रह नहीं सकता। स्थूल शरीर से क्रिया करता है, और सूक्ष्म शरीर से चिंतन करता है। तो स्थूल शरीर से जो क्रिया है करने की इसको आदत है, किए बिना नहीं रह सकता, करते करते थक जाता है। स्थूल काम करते थक जाता तो फिर सूक्ष्म चिंतन करने लगता है, मन के घोड़े उड़ाने लगता है, वो भी उड़ा उड़ा के थक जाता है तो फिर सो जाता है। और सोने के बाद उठता है, अपने घर में नहीं जाता है, फिर वही स्थूल क्रिया में जाएगा। स्थूल क्रिया में जाएगा या तो चिंतन में जाएगा। 2 मिनट के लिए आंख खुल जाए तो सारे जगत का दीदार हो जाता है। ऐसे केवल 2 मिनट के लिए भीतर की आंख खुल जाए तो जगदीश्वर का दीदार हो जाता है। 2 मिनट के लिए आंख खुलती है तो जगत का दीदार हो जाता है। ऐसे ही भीतर की आंख 2 मिनट के लिए खुल जाए तो जगदीश्वर का दीदार हो जाता है। लेकिन हीय का अंधा खूब करे संसार का धंधा। गाते हैं लोग भजन, निगुरा होता हीय का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, जम का बने महिमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। कान फूंका लिया या मंत्र ले लिया ये सब ठीक है, लेकिन गुरु जहां कहते हैं बैठने को वहां बैठना अगर 2 मिनट भी आ जाए बेड़ा पार हो जाता है। गुरु अपने आप में बैठने को कहते हैं, अपने आत्मा में शांत होने को कहते हैं। निगुरा आदमी ये उपदेश सुनने के लायक नहीं होता, सुन भी लिया तो उसको उसमें श्रद्धा नहीं हो, रुचि नहीं होगी, अभ्यास नहीं करेगा। लेकिन जो गुरु भक्त है, जिसका चित्त कुछ न कुछ अपने जीवन का मूल्य समझता है, ऐसा साधक ऐसा भक्त के लिए ये ब्रह्मचिंतन का ब्रह्म ज्ञान का अमृत है। वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। हजारों वर्ष का अंधेरा एक दियासलाय मात्र से गायब हो जाता है। ऐसे हजारों वर्ष से ये जीव जन्मता मरता दुख भोगता है, लेकिन थोड़ी सी आत्म प्रकाश की झलक ही मिल जाए तो निहाल होने लगता है। चित्त शुद्ध क्यों नहीं होता है कि चित्त या तो प्रिय का चिंतन करता है तो बहिर्मुख है, या तो अप्रिय का चिंतन करता है तो मलिन होता है। प्रिय वस्तु का चिंतन करने से भी तो उसको दौड़ना है, और अप्रिय का चिंतन करने से भी इसको दौड़ना है, मलिन हो जाता है। पहले चिंतन कर रहे थे रुपयों के, अब चिंतन कर रहे हैं कि रुपयों का खर्च करने का। पहले चिंतन कर रहे थे मित्र का, अभी चिंतन कर रहे शत्रु का। पहले चिंतन कर रहे थे कपड़ों का, अभी चिंतन कर रहे हैं धोबी का। पहले चिंतन किया था दर्जी का, कपड़े सिलाने के लिए दर्जी का चिंतन किया था, अब कपड़े धुलाने के लिए धोबी का चिंतन करते हैं। कपड़े धुल धुल कर फट गए, अब फिर दुकानदार का चिंतन करते हैं। ऐसे उस व्यर्थ चिंतन में जीवन व्यर्थ हो जाता है। जहां से चिंतन उठता है उस यार की मुलाकात नहीं होती। श्री राम। केवल 2 मिनट के लिए एक दिया सलाय जले तो घर का अंधेरा मिटा देती, लेकिन हजारों वर्ष से घर में पड़ी हो तो अंधेरा नहीं मिट सकता है। बाकस के ग्रोस पड़े हो लेकिन गोदाम में अंधेरा होता है। उन ग्रोस बंडलों की मौजूदगी होते हुए भी कोई फायदा नहीं, क्यों? उस दियासलाय का वहां उपयोग नहीं। ऐसे ही तुम्हारे में ग्रोस के ग्रोस दियासलाय पड़ी, फिर भी ही हमें अंधा है, क्योंकि दिया सलाय का उपयोग नहीं। हम अपने प्राप्त अनुभव का उपयोग नहीं करते, हम हमारे विवेक का उपयोग नहीं करते, मन की भाग दौड़ में धमाधम करते, अंधेरे में फांफा मारते। मन कहता ये हो जाएगा तब सुख होगा, इतना कर लूंगा तब सुख होगा, सरपंच हो जाऊंगा तो सुख होगा, स्कूल का उद्घाटन हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, मास्टर मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा, लाड़ी मिल जाएगी तो सुख हो जाएगा, ऐसे करके अंधेरे गोदाम में धक्के खिला रहा है। तन नहीं होता तभी भी मन क्रिया करना छोड़ता नहीं। आपने सुना होगा कि किसी आदमी को भूत जगाने की कला आ गई, उसने भूत जगा लिया, भूत जगाया, काम तो बहुत थे, भूत जगाया, भूत को काम बताया, भूत ने कहा सब काम बताओ मेरे को, मैं निकम्मा नहीं रहना चाहता। काम बताया, पहले तो काम पूरे नहीं होते थे, लेकिन अब भूत को बताया तो फटाफट कर लिया। शारीरिक काम जरा देर से होते, परिश्रम होता है, लेकिन मन से फटाफट होता है। समय शक्ति का ज्यादा खर्च होता है और फल थोड़ा मिलता है शारीरिक काम से। मानसिक काम से समय कुछ कम लगता है और फल ज्यादा होता है। इससे भी समाधि से फल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी आंख नहीं खुली, उसका पता नहीं चला। समाधि किसकी सत्ता से होती है? आनंदानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, तो इनसे सामर्थ्य मिलता है, योग्यता बढ़ती है। लेकिन गुरु लोग महापुरुष कहते हैं कि इससे भी आगे एक छलांग मार के जिससे समाधि होती है उस परमात्मा में स्थिति हो जाए, वो ब्रह्मणी स्थिति है। जो ब्रह्म में स्थित हो गया वो फिर प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय अवस्थाओं को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता है। भोगी भोग प्राप्त करके हर्षित होता है और भोग के वियोग में उद्विग्न होगा। योगी योग प्राप्त करके हर्षित होता है, योग खंडित होते उद्विग्न होगा। त्यागी त्याग में हर्षित होता है, रागी राग में हर्षित होता है। लेकिन जो जगा हुआ है, जिसकी आंख खुल गई है, जिसने अपने आत्मा परमात्मा को जान लिया है, वो फिर न हर्षित होता न शोकातुर होता है। सागर के किनारे खड़े हुए व्यक्ति को सागर की गहराई की शांति का क्या पता, जो लहरों को देख रहा है, लहरों को गिन रहा है, उसके सागर के मूल की स्थिरता का क्या पता। ऐसे ही जो ब्रह्मवेताओं को, ज्ञानियों को या ईश्वर को बाहर बाहर से देखते हैं, उनको ईश्वरत्व की गहराई का क्या पता, ज्ञानी की गहराई का क्या पता। तो यहां बोलते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्मवेता ब्रह्म में स्थित होता है। एक राजा था, पशुओं की भाषा जानता था। राजा रानी भोजन करने बैठे तो एक कीड़ी ने रानी की थाली से उठाकर राजा की थाली में धर दिया भोजन। तो दूसरी कीड़ी ने कहा, स्त्री का जूठा पुरुष को खिलाते तो पुरुष की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, ऐसा पाप क्यों करते। राजा को किसी महात्मा ने, योगी ने वरदान दिया था कि तू जीव जंतुओं की भाषा समझ सकेगा। राजा भोजन करने बैठे अपनी रानी साहिबा के साथ, रानी की थाली से उठाकर किसी कीड़ी ने राजा की थाली में कुछ धर दिया। तो दूसरी कीड़ी ने कहा कि पत्नी का जूठा पति को खिलाती है तो पति की तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो इतने पाप में क्यों पड़ती। राजा ये बात समझ गए, वो जरा सा दूर कर दिया। कहानी है कुछ समझाने के लिए। राजा हंस पड़े तो रानी ने हंसने का कारण पूछा। राजा ने कहा ये बताऊंगा नहीं। रानी ने कहा कुछ भी हो पति तो बताओ। ने कहा ये नहीं बात बताई जाएगी। रानी ने हट ली, ने कहा कि मेरे को जंतुओं की भाषा सुनने का वरदान मिला है, लेकिन जब वो सुनाऊंगा किसको तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। जंतु क्या बोलते हैं आपस में, वो अगर दूसरे को सुनाऊंगा तो मेरा प्राण निकल जाएगा। निर्णय का इतनी बात तो मेरी मानो, मेरे को सुना। बोले मैं मर जाऊंगा कि नहीं मरोगे, कि नहीं मर जाऊंगा, कहते वो कुछ नहीं होगा, आप सुना तो दो, फिर जो होगा होगा। तमे मरो तो मरो, तमे नीचे ही जाओ तो नीचे ही जाओ, पर मारी इच्छा पूरी करो। स्त्री का स्वभाव, राजा तो रानी के संग में आकर कुछ लंपट्टू हो चुका था, देख ऐसा कर प्रिय कि काशी में चलकर सुनाऊ। राजा रानी काशी जाने को तैयार हुए, रास्ते में बकरा और बकरी आपस में कुछ बोल रहे थे। राजा तो बात जानता था, बकरी बकरे को बोलती है कि वो जो नीचे कुआं में खड़ लगा है हरा हरा घास, वो मुझे लाके दे। बकरा बोलता है कि कुएं में उतरूंगा, कहीं फिसल गया तो वापस नहीं आऊंगा। बोले वापस आओ चाहे ना, मेरे को तो लाके दो। राजा भाषा जानता था। बकरा ने कहा वो मैं मूर्ख राजा नहीं कि पत्नी के कारण काशी जाके मरूंगा। मैं कोई बायला नहीं हूं कि मुझे से राजा अंधा हुआ स्त्री के कहने लगा है, ऐसे मैं कोई बायला नहीं हूं। स्त्री का गुलाम, स्त्री का चाकर, तो मैं स्त्री चाकर नहीं हूं, जाके कुएं में तेरे लिए घास ले। बोले प्राणनाथ, नहीं तो मैं चले जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, तो मर जा तो मर जा। राजा को फ्लश हुआ कि एक पशु जितना समझता उतना मैं नहीं समझता। हाय वासना, ये बाह्य कर्म, ये बाह्य इंद्रियों के भोग, तूने मुझे ब्रह्म में से स्थिति हटाकर भोग में कर दी, और वही भोग मुझे बर्बादी के तरफ ले जा रहे हैं। हाय राम, जितना आदमी भोग में आसक्त होता है उतना भोग की सामग्री आदमी को चूसती है, आदमी को बर्बाद करती है। राजा सावधान हो गया। शास्त्र में तो ये बात भी आती है, पिता और माता दुराचारी हो, पापी हो, और पुत्र सदाचारी हो, तो पुत्र का तर्पण करने मात्र से सदाचारी व्यक्ति तर्पण करेगा, माँ बाप का उद्धार हो जाएगा। नरक में पड़े हुए माँ बाप भी सदगति को प्राप्त हो जाएंगे अगर पुत्र श्रेष्ठ है, सदाचारी। माँ बाप दुराचारी हो और पुत्र सदाचारी हो तो माँ बाप का उद्धार हो जाएगा। अब माँ बाप सदाचारी है, अब पुत्र दुराचारी है, तो सदाचारी माँ बाप स्वर्ग में पड़े हैं और दुराचारी पुत्र तर्पण भी करेगा, माँ बाप की अधोगति हो जाएगी। इसीलिए शादी विवाह करते थे तो लड़की अपने कुल की, अपने जात की पसंद की जाती, फिर शादी विवाह होता है, फिर उससे जो संतान पैदा होती है। जब काम अंधा हो जाता है, आदमी भोग के तरफ दृष्टि रख के ही शादी करता है, तो ये सब गुण हो चाहे ना हो, योग्यता हो चाहे ना हो, कुल का विनाश, पितरों का विनाश होता हो तो हो, लेकिन प्यार किया तो डरना क्या। चौ श्री राम। तो भोग आदमी को अंधा कर देते, फिर अपना विनाश, माँ बाप के सुख का विनाश, पितरों के शांति का विनाश करके जो आदमी सुखी होना चाहते हैं उनको पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, माँ बाप का हृदय ठहरता नहीं, आशीर्वाद नहीं मिलता, तो वो फिर सुखी होता भी नहीं। जो आया वैसे शादी कर लिया, जैसा आया तैसा भोग भोग लिया, जैसे आए तैसे कर्म कर लिए, फिर भी वो सुखी तो नहीं है ना बेचारे। तो जितना आदमी, कहने का तात्पर्य, जितना आदमी भोग के अधीन हो जाता है उतना उसकी विवेक शक्ति नाश हो जाती है, और भोग के अधीन होकर भोग भोगने लग जाता है तो भोग से सुख के बजाय दुख ही उसके लिए पैदा हो जाता है। नहीं तो सब भोगी सुखी हो जाने चाहिए, जैसा ऐसा खा लिया जैसा आया वैसा कर लिया तो बहुत सुखी हो, सुखी तो वही होना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर न धर्म का अनुशासन है न गुरु का अनुशासन है न पितरों का है किसी का नहीं, तो स्वतंत्र हुए तो सुखी वो होने चाहिए। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा दुखी मिलेंगे, ऐसे लोग ज्यादा बेचैन मिलेंगे और ऐसे लोग ज्यादा आत्महत्यारे मिलेंगे। सीधी बात है, हाथों हाथ परिणाम। तो शास्त्र कहता कि पिता और माता अगर पापी भी हो और पुत्र पवित्र है महान है तो तर्पण करके पिता माता का उद्धार कर देगा, लेकिन माता पिता सदाचारी है पुत्र दुराचारी है तो माता पिता अधोगति होगी। एक चुटकुला सुनाते संत लोग कि हंस और हंसी जा रहे थे, रात्रि पड़ी, किसी कौवा के माला में निवास करने की हंस ने इच्छा की, हंसिनी सुंदर देखकर कौवा की बुद्धि भ्रष्ट हुई, कौवा ने उनको रहने दिया। सुबह हुआ तो कौवा कहता है हंस को, तेरे को जाना है तो जा, हम तो यहीं रहेंगे, हंसिनी तो मेरी वाइफ है। कौवा ने कहा ये क्या अतिथि की पत्नी छीन लेना? बोले ये हम सब नहीं जानते, अगर आपको कोई न्याय कराना हो तो चलो न्यायाधीश के पास। कौवा चतुर होता है, पितरों का दूत होता है, तो उसने न्यायाधीश के पास ले गए हंस को। लेकिन पहले न्यायाधीश के घर जाके मिलकर आया कि देखो न्यायाधीश जी, हमारे फेवर में जो न्याय दिया तो मैं आपको पितरों का दर्शन कराऊंगा, हंसनी मेरी है ऐसा न्याय देना आप तो मैं आपको तुम्हारे पितरों का दर्शन कराऊंगा। जज साहब आ गए लालच में, उन्होंने युक्ति खोज निकाली, बुद्धि तो सबके पास है, जब आदमी मोह में लोभ में लालच में ममता में आता है तो बुद्धि उसी प्रकार काम करने लगती, और जब परमात्मा की तरफ जाता है तो बुद्धि उस प्रकार का काम करने लगती है। बुद्धि एक तलवार है, चाहे फिर अपने पैर काटो चाहे जाल को काटो। ओम होम होम। महाराज न्यायाधीश ने युक्ति लड़ाई कि हंसनी को घोंसले में रखकर न्याय सुन लो, और जिसका प्यार पक्का होगा वो पहले पहुंचेगा, जो पहले छूले हंसनी को उसकी हंसनी हो गई, अब कुआ हंसनी को उसकी हंसनी हो गई, अब कुआ कौवा जो है हंस से तेज उड़ता है, ये बात तो जानते हैं सब। वो कौवा तेजी से पहुंच गया, न्यायाधीश ने न्याय दिया कि हंसनी जो है वास्तव में पत्नी तो कौवा की। जज साहब ने कहा कौवा को अब मेरे को पितरों के दर्शन कराओ। कौवा उसको ले गया गंदगी में, एक कीड़ था, बोला ये तो तेरा बाप है, खदबदा रहा था, और मिसिस ईयड़ जो है यह है तेरी माँ। हाउ कैन, बोले जिसका बेटा अन्याय करे अन्याय का जजमेंट दे उसके पितर तो ऐसे ही होंगे और दूसरा क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं उस पर हमारे पिता पिता मां दादा परदादा का सुख दुख निहित है। इसलिए अगर ब्रह्म चिंतन करते हैं, अगर भोग के और क्रिया के अधीन होकर जीवन बर्बाद करते हैं तो हमारी तो बर्बादी होती है, लेकिन हमारे को जिन्होंने पाला पोषा अपने पेट से बचाकर हमें खिलाया उनके साथ हम विश्वासघात करेंगे। तो भोगी आदमी अपना भी विनाश करता है, अपने साथ भी विश्वासघात करता है, अपने पिता माता के साथ भी करता है, अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ भी करता है। और जो योगी है वो अपना भी उद्धार करता है, पिता का दादा का दादी का नाना का नानी का कल्याण करता है। तो ईश्वर चिंतन करने वाला व्यक्ति वास्तव में सर्वहितेशी होता है, सर्वभूत हितेरत होता है। जिन वस्तुओं में जिन व्यक्तियों में जिन भोगों में राग होता है वो आदमी को फंसाता है। द्वेष आदमी के अंतःकरण को मलिन करता है, उद्विग्न करता है, तो राग अपने अंतःकरण को फंसाता है, आसक्त करता है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, बस स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता है। पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित होता है। जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता, वो समझता कि जो भी प्रिय वस्तुएं हैं घड़ी भर के लिए सुख देगी या घड़ी भर के लिए आसक्ति है कि ये चाहिए चाहिए, तब वो सुख देती। सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख व्यक्तियों में नहीं है, सुख वासना में। जिधर की वासना होती है वो वस्तु मिलती है तो सुख मिलता है। जैसी वासना होती है ऐसी वस्तु आती है, ऐसा संयोग होता है तो सुख मिलता है। तो ये वासनाओं का सुख जो है, ये सुख जीव को बंधन में डाल देता है। और आत्मा का जो सुख है, वो सुख जीव को सदा के लिए स्वतंत्र कर देता है और स्वच्छ कर देता है, निर्मल कर देता है, निरंकार कर देता है। तो जिसकी मति स्थिर है वो प्रिय वस्तु, प्रिय परिस्थिति, प्रिय पदार्थ पाने पर हर्षित जैसा देखेगा, लेकिन अभिनय मात्र, नाटक मात्र। अप्रिय वस्तु, अप्रिय व्यक्ति, अप्रिय परिस्थितियां आने पर उसको जरा अच्छा नहीं लगा ऐसा देखेगा, लेकिन दिखने भर को है। जैसे पानी में लीटा करो तो दिखने भर को है, अपने आप मिट जाए। मनुष्य के अंतकण चार प्रकार के होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कोई बात हुई या कोई वस्तु मिली तो इतने आसक्त हो जाएंगे, कोई दुख मिला तो इतनी गहरी चोट हो जाएगी, कोई सुख मिला तो एक ऐसी गहरी, इतनी गहरी लकीर खिंच जाएगी कि जैसे लोहे में लीटा, लोहे में लकीर करो फिर तो उसको भट्ठे में डालो और कुछ पड़े घन, तभी वो लकीर मिटे नहीं तो मिटे नहीं। ऐसे कोई दुख हुआ या कोई सुख हुआ तो ऐसी लकीर पड़ गई अंतःकरण में कि जिंदा है तब तक तो भूलेगा नहीं, मौत की जब भट्टी में जाएगा तब कहीं विस्मृति होगी, नहीं तो कि 13 वर्ष पहला ते मारो अपमान करो तो बराबर छे के 15 वर्ष पहला आपड़े मल्या था बराबर ने, आपड़े पछी होटल में गया था हा हा हा। अरे जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। लेकिन वो पीछा करते रहते, 15 साल पहले में ये करा, 13 साल पहले तूने ये किया था, 15 साल पहले मैंने ये दिया था, 2 साल मैंने ये दिया था, 7 साल अगे 6 साल खां वठी 6 साल अगे तो फलाणु मेणू दिनु, 5 साल पहले तूने फलाना मेणा मारा था, 3 साल पहले तेरे को ये मैंने दिया था, 2 साल पहले तूने ये किया था। ये जो आदमी है अपनी शक्ति बिखेरते रहते और अंदर से आग पैदा करके और आप ही उसमें जलते रहते। जय श्री राम। तो प्रिय वस्तु प्राप्त हो गई, वो उसका उपभोग हो गया, वो चली गई, तभी भी जो सुखद स्थिति है उसको याद करके वर्तमान का अनादर करते हैं। जो दुखद स्थिति हो गई उसको भी याद करके वर्तमान का अनादर करते हैं, और जो वर्तमान का अनादर करता है उसके जीवन का अनादर हो जाता है। इसीलिए जो बुद्धिमान साधक है बीते हुए सुख को भी याद नहीं करते और बीते हुए दुख को भी याद नहीं करते।